معزز بھائیو، معزز ذہنوں، عزیز طلبہ، عزیز طالبات، یہ تھے اعتقادات، دوسرے ہیں اخلاقیات اور تیسرے ہیں اعمال، اور اعمال کی مناسبت سے عملیات. یہی تین بنیادی چیزیں ہیں بھائیوں کے لیے، بہنوں کے لیے، جوانوں کے لیے، بوڑھوں کے لیے. یہ اسلام کے مفصل ترین نصاب کا خلاصہ ہے. تین چیزیں: عقیدہ، اوصاف، اعمال. عقائد، اخلاق، اعمال. پورے اسلامی تعلیمات خلاصہ یہ تین چیزیں، اور جن میں یہ تین چیزیں جمع ہو جائیں گے تو سمجھ لیجئے کہ حقیقت ایمانیوں سے حاصل ہو جائے، محبوبیت ربانیوں سے مل جائے، ابدی راحتوں والی زندگانی اسے میسر آ جائے. چنانچہ پروردگار عالم نے پڑھی گئی آیات کے آخر میں فرمایا، اولئک هم المؤمنون حقا، یہ ہیں سچے ایمان والے، وهم درجات عند ربهم، پروردگار کے پاس ان کے لیے درجات یعنی درجات ترقی اسی کو ملتی ہے، تو پسندیدہ بڑھیا ہے. گناہوں کی معافی اور اس ان کریم عزت کی روزی اور اس قسم مراد انسان کی ہر ضرورت عام طور پر نظر رزق کا استعمال ہم کھانے پینے کی چیزوں سے متعلق کرتے ہیں، ایسا نہیں. شان انعامات ہیں ایمان کی سچائی، رب کے یہاں درجات، روزگار کی جانب سے نعمت و مغفرت، اور روزگار کی جانب سے رزق کریم کا وعدہ. سب چیزوں کو موقوف کیا گیا ہے تین چیزوں پر: ایک عقیدہ، دوسرے صفات، تیسرے اعمال. دوسرے لفظوں میں یوں کہہ لیجیے، اللہ جل شانہ کی جانب سے ایمان کے بعد تین نعمتوں سے نوازے جانے کا اس آیت میں تذکرہ ہے. ایک درجات کی نعمت، دوسرے مغفرت کی نعمت، تیسرے رزق کریم کی نعمت. ان تین نعمتوں سے برقرار جانے کی خوشخبری ہے تین قسم کی چیزوں پر: ایک عقیدے کی صحت، دوسرے اوصاف قلبیہ، تیسرے اعمال صالحہ. چنانچہ پہلی چیز کا تذکرہ ہے، اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، اللہ کی بڑائی، اللہ کی عظمت، اللہ کی کبریائی اور اللہ کی قدرتوں کا اعتراف اس درجے سے ادا ہو کہ ان کا نام آئے آدمی کا دل جلے، ان کی بات آئے آدمی لرز لینے لگے. اللہ کے بارے میں عقیدے کیے گئے بھی ہے. اس سے تعلق اندرون میں ایسا، جیسے جیسے اللہ کا تذکرہ آتا رہے، اللہ کی باتیں سامنے آتی رہے، کیفیت ایمانی میں ازدیاد ہوتا رہے، زیادتی ہوتی رہے، اور پروردگار عالم کے بارے میں دل میں اعتماد اور توکل کی صفت پیدا ہو جائے، مکمل بھروسہ اور اعتماد. صفات سے متعلق الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون في أعمال زكاة. اب ہر بھائی کو، ہر بہن کو، ہر طالب کو، ہر طالبہ کو یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ کی بڑائی کتنی میرے دل میں آئی، اللہ کی عظمت میرے دل میں کس قدر ہے، اور اللہ کی قدرتوں کا کس درجے اعتراف اندرون میں پایا جاتا ہے. اللہ سب سے بڑے ہیں، ظاہر ہے کہ ان کی بات بھی سب سے بڑی ہے، اس لیے اب ان کی بات کے بعد میں کوئی بات نہیں، تو فرمایا بس ہو گئی، اس کے لیے ضرورت پڑتی ہے ان سے اس تعلق کے بڑھنے کے لیے، ان کی معرفت ضرورت پڑتی ہے، علم میں وسعت ضرورت پڑتی ہے، ان کے ذکر کی کثرت ضرورت پڑتی ہے، ان کے قدرتوں کے مذاکرے کی ضرورت ہوتی ہے، ان کی بڑائی کا اعتراف احساس رکھنے والے لوگوں کی صحبت، پھر یہ صفت آتی ہے آگے. علم کی آج بڑی کمی ہے، معرفت ربانی تو حاصل ہے ہی نہیں لوگوں. اللہ کا تعلق بندوں سے کیسا ہے، بندوں کا تعلق اللہ سے کیسا ہے، اللہ اور بندوں کے درمیان میں رابطہ کس قسم کا ہے، کہاں ہے بلکہ ڈھونڈنے لگا ہوں، کہاں نہیں ہے بلکہ وہ نہ جاننے والا. بندے سے اللہ کا تعلق کب ہوتا ہے، اللہ سے بندے کا تعلق کب ہوتا ہے، اور کدھر ملنے ان سے اپنے تعلق کے بغیر اور ان کا اپنے سے تعلق کے بغیر ہم اور آپ ہیں ہی نہیں، ان کی عنایتیں بندوں پر کب ہوتی ہیں کب نہیں ہوتی ہیں سوال ہے لوگوں میں. 24 گھنٹے ان کی عنایتوں کے تسلسل ہیں، اس کا احساس بھی لوگوں میں نہیں رہے. جاننے والے کہتے رہے میں چل بھی رہا ہوں تو آپ مجھے چلا رہے ہیں میرے ساتھ ساتھ رہ کر. حضرت صاحب رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا مجھے چلا رہا ہے میرے ساتھ ساتھ چل کے. اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتے ہیں اللہ ہی ہے جو تم کو چلاتے ہیں خشکی میں بھی تری میں. ہمارا رہنا، ہمارا ٹھہرنا، ہمارا بیٹھنا، ہمارا ہونا سب انہیں کے سہارے. اللہ پاک فرماتے ہیں وحم اللہ فی البر والبحر، ہم نے ہی تو اٹھا رکھا ہے ان کو. پرندے فضاؤں میں اڑتے ہیں، فضاؤں میں ٹہل جاتے ہیں، دیکھنے والا سمجھتا ہے کہ ہواؤں کی جوش پر اور اپنے پروں کے زور پر وہ ٹھہرا ہوا ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں اولم یرو الطیر فوقہم صافات ویقبض ما یمسکہن الا الرحمن. پرندوں کو دیکھو فضاؤں میں، سروں کو پھیلائے ہوئے بھی، سکیڑے ہوئے بھی، کون تھاما ہوا ہے ان کو. اللہ پاک فرماتے ہیں ما یمسکہن الا الرحمن، رحمان ہی نے تو ان کو روک رکھا ہے. زمین قائم ہے، آسمان قائم ہے، ویسے بس ایسے ہی قائم ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا، آسمانوں کو زمینوں کو تو ہم نے کام رکھا ہے، اور ان سب چیزوں کی حفاظت تعالیٰ ہی فرما رہا ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں وَلَا يَعُودُهُ حِفْظُهُمَا، ان چیزوں کی حفاظت کرنا ان کو تھکاتا نہیں. کیسے ہیں وہ؟ اللہ پاک نے فرمایا لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ، انہیں اونگ آتی نہ نیند آتی. ہمارے حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے میری کائنات کا نظام انہوں نے قائم رکھا ہے، ہر چیز کو انہوں نے ہی سنبھال رکھا ہے، ہر چیز کو انہوں نے ہی تھام رکھا ہے. اگر نیند آئے، اونگ آئے تو کیا ہوگا؟ اس کو سمجھانے کے لیے فرماتے تھے ہاتھ کا تصویر میں ہو، آدمی بیٹھ کے پڑھ رہا ہو، मोंग आती है गिरी ढीले होकर तस्वीर नीचे गिर पड़ती। बार सुन रहे हो तो जहन में रखे, अलिम इलमी के शौक इज्जत जाता हमारे सबका बुजुर्गों को, पढ़ने का इश्तियाक इतना था, किताबों के मुताले का ऐसा शौक था, थकने तक तो किताबें देखते ही थे, लेकिन जब नींद का तकाजा होता तब भी ये चाहते कि सो जाऊंगा तो इतने घंटे मेरा वक्त तालीम के हुसूल में ही नहीं गुजर सकेगा, और जितना ज्यादा गुजार सको गुजारो, इस वक्त से नींद पर कंट्रोल करते हुए किताबों में देखने में मशगूल रहते थे। और उसका तरीका ये इख्तियार उन लोगों ने कर रखा था, उनमें से बाद ने एक हाथ में किताब पकड़े हुए किताब देख रहे, दूसरे हाथ में एक पत्थर पकड़ रखा है और नीचे एक बर्तन रख रहे और किताब देख रहे देख रहे देख रहे। जरा ओम आई तो पत्थर गिरे ढीले हुई और पत्थर हाथ से छूटा तो नीचे बर्तन पे गिरा, तो टन की आवाज आई तो होशियार हो गई। नींद को तो यू उठाते। और आज के हमारे बच्चों में दो खुशौक का आलम यह है, मोल साहब बयान कर रहे हैं बच्चे सो रहे, मोल साहब सबक पढ़ा रहे हैं बच्चे सो रहे, और कोई गए तो ऐसी गहरी नींद सोते हैं, अरे अल्लाह के बंदे सबक हो रहा सो क्यों रहा है, बोले तो उसको कुछ पता ही नहीं रहे। अरे तो देखो बाजू वाले को, उसके कंधे पे हाथ फिराए तब भी होश में नहीं आता, जरा हिलाए हाँ हाँ कर, शौक नहीं है किसी चीज का, तलब नहीं है किसी चीज का, आलम अदा करते हैं तलब पर। और कोई कोई तो ऐसे हैं कि वो रोजाना एक एक घंटे बैठ के पढ़ते नहीं है, हफ्ते में एक आध दफा एक आध घंटा उनको मस्जिद में बैठ के कुछ सुनना पड़ता है तो उसमें भी सो जाते हैं, खौफ सही हुई है अल्लाह माशा दूसरे नुकते नजर। और ये अजीब गरीब बात है कि अक्सर देखने में मिलता है कि जुम्मा के दिन जुम्मा का खुतबा शुरू होते ही कोई फरमा शुरू कर देते, ऐसा मालूम होता है कि सदीब साहब को ऐसे घुंघरू दार गले वाला मुखर उनके चेहरे पर रखा है कि इधर उन्होंने खुतबा शुरू किया इधर लोरियां मिलना शुरू हो गई। दोस्तों अजीज तलबा गफलत वाला अपना जो मिजाज है उसे खत्म करना चाहिए। अल्लाह पाक कौन है जिन्हें ओम नहीं जिन्हें नींद नहीं, आसमान और जमीन की जो हिफाजत फरमाते हैं, आसमान और जमीन को जो थामे हुए हैं, फजाओं में परिंदों को रोके हुए हैं, मुझे और आपको उठाए हुए हैं और सहारा दिए हुए हैं, और उन्हीं के जरिए से हमारा कहीं जाना और आना होता है। और वो दिगारे आलम तो ऐसे हैं कि हर आन हर लम्हा बगैर किसी वक्त के हमारा उनसे ताल्लुक है, उनका हमसे ऐसी सूरत में जिस कदर इसका मुजाकरा होगा उससे ताल्लुक बढ़ेगा, मोहब्बत बढ़ेगी, अजमत दिल में आएगी, बड़ाई दिल में आएगी, एहसानात का एतराफ होगा, और फिर उसके नतीजे में उनकी बात के आगे झुक जाना और उनके जिक्र पर दिल का बेकरार हो जाना, ये कैफियत पैदा हो जाएगी जो इन नेमतों के हुसूल का जरिया है। दूसरी चीज फरमाई कि भरोसा परवरदिगार आलम की जात पर, सिफत तवक्कुल आ जाए, हर मामले में अल्लाह की जात पर भरोसा, उन्हीं पर एतमाद। क्यों? इस वास्ते कि सब कुछ उनके कब्जे में है और उनको हर चीज पर कुदरत है, लेकिन किसी दूसरे के ऊपर एतमाद कैसा, सहारा कैसा, भरोसा कैसा। अल्लाह पाक ने पुराने पाक में फरमाया खुद नमाज का एहतमाम करो, अपने घर वालों को नमाज की ताकीद करो, रोजी हम देंगे, वह अमर अहलक बिस्सलाती वस्तबिर अलैहा ला नसअलुक रिज़्क़ा नहनु नरज़ुक, खुद नमाज का एहतमाम करो करके मुतालिकीन को नमाज की तरकीब करो, हम तुमसे रोजी नहीं चाहते, रोजी तो हम देते हैं, तो अल्लाह पाक ने फरमा दिया, आदमी को एतमाद हो जाना चाहिए ना। हमारे बड़ों ने तो फरमाया था आसमान तांबे का जमीन लोहे की हो जाए, पानी का एक खतरा भी न बरसे, तब भी मुझे अपनी रोटी की फिक्र नहीं है, इस वास्ते कि मेरे परवरदिगार ने मेरी रोटी और रोजी की जिम्मेदारी ले रखी। हमारा भरोसा बताने किन किन चीजों के ऊपर चुपत निकल गई। और आपको मालूम है कि जब अल्लाह के जात पर से भरोसा हट जाता है तो फिर ऐसी सूरत में आदमी जगह जगह की ठोकरें खाता फिरता है और तेरा सुकून उसे मुयसर नहीं है। इसी वास्ते कहा गया है वो एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है हजार सजदों से देता है आदमी को नजर। कभी उस पर भरोसा, कभी उस पर, कभी उस पर। कभी शरीर में भी आता है तो बंदो इधर उधर अखबार के पीछे ज्यादा मत पड़ो, कहीं ऐसा ना हो कि उधर से ये फैसला हो जाए कि अच्छा तुम्हारी नजर दूसरों के ऊपर है, जाओ तुम दूसरों के हवाले कर देते। इसलिए भरोसा अल्लाह की जात पर हो, सिफत से तवक्कुल की आदमी को अगर हासिल हो जाए तो इंशाल्लाह मजीद बहुत सारी दीगर सिफात का हासिल हो जाना उसके लिए बहुत आसान हो। तीसरी चीज आमाल है। आमाल में दो किस्म के अमल, एक जिस्मानी अमल है, दूसरे माली अमल है। जिस्मानी अमल में हम ताला फरमाया अल्लज़ीन युक़ीमून अस्सलाह, तो नमाज अदा करते हैं। नमाज अदा करने के मफ़हूम की वसी करते हुए बाज़ उलमा ने यह बात बयान फरमाई है कि इसमें तमाम जिस्मानी अमल दाखिल है। इबादत दो किस्म की है, एक इबादत से बदलिया, दूसरे इबादत से मालिया। अल्लज़ीन युक़ीमून अस्सलाता में गोया इबादत से बदलिया का तज़किरा है। बदन अल्लाह के मंशे के मुताबिक इस्तेमाल में आए और इसकी प्रैक्टिस नमाज की मखसूस सूरत में कराई जाती है। पूरे अख्तियार में रहता है, हर चार जाने में घूम सकता है, लेकिन नहीं उनका मंशा नहीं। हत्ता के सीने के रुख को क़िबले से के रुख से हटाने की तक हालत नमाज में इजाजत है, चारों जाने में घूम सकता है, उछल कूद सकता है हालत नमाज में, उछल कूद नहीं देता, बात कर सकता है हालत नमाज में, गुफ्तगू नहीं कर सकता। के बाद ऐसी चीजें जो फी नफ्सी ही खराब नहीं है मगर नमाज वाली हालत में मना है तो इसलिए नहीं कर सकता। कोई आगे बाजू में हम नमाज पढ़ रहे हैं अस्सलाम वालेकुम, जब मैंने वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह, ममानात है। न सिर्फ ये कि ममानात की जगह बचना है अपने आप को, बल्कि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत के मुताबिक किसी चीज में इजाफा करने की भी गुंजाइश नहीं है। एक सहाबी रजी अल्लाह अन्हु के पास में एक साहब बैठे हुए थे, उनको छींक आई। उन्होंने छींक के जवाब में कहा अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलाम अला रसूलिल्लाह। ये कहा वो जो सहाबी बैठे हुए थे, उन्होंने कहा मैं भी कहता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह और अस्सलाम अला रसूलिल्लाह, लेकिन तुम्हारा ये अमल सही नहीं है। ये जुमले अपनी अपनी जगह ठीक है, लेकिन ये जो तुमने छींक के जवाब में ये दो जुमले मिला दिए, नबी अलैहिस्सलाम ने ये नहीं सिखाया। आपने तो फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ल हाल पर, हालत नमाज में बात कर सकता है लेकिन नहीं करता, दूसरे की बात सुन सकता है लेकिन सुनने की इजाजत नहीं, इधर उधर देख सकता है मगर देखने की इजाजत नहीं, इधर उधर घूम सकता है लेकिन घूमने की इजाजत नहीं, हाथ पीछे बांध सकता है मगर बांधने की इजाजत नहीं, सजदे में जाकर दोनों पांवों को उठा सकता है लेकिन उसकी इजाजत नहीं, दो दानों बैठने के बजाय चार दानों बैठ सकता है लेकिन बैठने की इजाजत नहीं, और खड़े खड़े मुख्तलिफ किस्म के अज़कार और हालत क़याम में कर सकता है मगर नहीं कर सकता, कायदे में बैठे हुए सूरह फातिहा और रुकू में सूरत कर सकता है लेकिन नहीं करता, रकातों में इजाफा कर सकता है लेकिन नहीं करता। काय को उनके जैसा हुक्म है वैसा करना चाहिए। पूरे बदन के बारे में आप देखेंगे कि उनके हुक्म के ताबे रहता है। यही चीज सीखने की है कि मेरा जिस्मानी जो निजाम है, बदनी जो निजाम है, वो पूरा का पूरा उनके हुक्म के ताबे हो जाए। भगवान के पीछे खड़े हुए बात कर सकते हैं लेकिन नहीं कर सकते। गलती कर जाए इमाम साहब पढ़ते पढ़ते भूल जाए, क्या बोलते हैं हमारे अस्तादा जब बच्चा पढ़ता है पढ़ते पढ़ते रुक जाता है, थोड़ा पीछे से पढ़ो। बोलते थे अपन नमाज के पीछे नमाज में नमाज इमाम साहब के पीछे खड़े रहेगी, रुक गए पीछे से पढ़ लो। बोल सकते हैं पीछे से पढ़ लो, अगर बोले तो पूरे पीछे बोल जाए, पूरा बदन ही निजाम अल्लाह के हुक्म के ताबे हो जाए और ममिमा रजना होंगे उनके खून में, पूरा माली निजाम अल्लाह के हुक्म के ताबे हो। तो दोस्तों पूरी तालीमात का खुलासा तीन चीजें, एक अल्लाह के साथ ताल्लुक का सही होना और यकीन और एतिकाद का दुरुस्त होना, और दूसरे उन सिफात के अंदरून में आना जो सिफात अल्लाह को पसंद है, तीसरे अपने जिस्म और माल का इस्तेमाल मंशाए रब्बानी के मौके पर। जो भाई जो बहन इन चीजों की तरफ तवज्जो करेगी इंशाल्लाह नजीर घरों में महल्लों में आबादियों में बस्तियों में पाई जाने वाली खराबियों का एक एक करके इलाज हो। सारी जो खराबियां हैं वो खराबियों की बुनियाद दो चीजें हैं, बदन का इस्तेमाल गलत है माल का इस्तेमाल गलत, और ये दो चीजों के गलत इस्तेमाल की बुनियाद सिफात का पैदा नहीं होना है। और सिफात का पैदा न होना परवरदिगार आलम की अजमतों की कमी का नतीजा है। अब उसके बाद में आपको 15 दिन का टाइम है, 15 दिन तक गौर कीजिए माशरे में पाई जाने वाली जो खराबी है उसके पीछे यही चीजें कारगर है। माल के बेजा इस्तेमाल के सबब माशरे में खराबी है, बदन और उसमें पाई जाने वाली तवानाइयों के गलत इस्तेमाल माशरे में पाई जाने वाली खराबी का नतीजा है, दिल में पाई जाने वाली सिफात रजीला माहौल और मुआशरे में पाई जाने वाली खराबियों का नतीजा है, और ये सब कसम अल्लाह जल्ल शानहु के बारे में एतिकाद और यकीन में पुख्तगी में कमी का नतीजा है। इसीलिए खुलासा जो है तमाम तालीमात का ये तीन चीजें हैं, इसे ध्यान में रखना चाहिए। आज खुफिया थोड़ी सी ज्यादा है इसलिए 15 मिनट पहले आप हजरात को छुट्टी दी जा रही है, छुट्टी का लफ्ज आते ही बच्चे तो बच्चे ही हैं, बड़ों के चेहरों पर भी मुस्कुराहट आती है। दो चीजों से लोगों को अदावत में, एक दावत से और एक दूसरे छुट्टी से, ये दोनों चीजों को बहुत गहरा जाना है। दावत आ जाए खिंचा हुआ चेहरा भी खेल जाए, बैठी हुई तबीयत भी उठ जाए, और दूसरे छुट्टी का मामला अगर किसी दिन नाजिम साहब बोलते हैं स्टाफ को बुला के 3 दिन छुट्टी, देखिए मैं उनकी खुशियों का क्या ठिकाना होता है, अंदाजा लगाना मुश्किल होता है। तो बहरहाल हम समझते हैं कि आपको खुशी ये हो रही होगी कि 15 मिनट पहले आपको छुट्टी दी जा रही, अब सारे जल्द शान हो आप हजरात के इस साल लोग मोहम्मद को बेहद कबूल कर पाए, और जो बातें मुजाकरे हुए सबक में सामने आई है उसकी तरफ हर शख्स संजीदगी से तवज्जो करे, अच्छी सिफात पैदा करे अपने अंदरून में, माल दूसरों का इस्तेमाल सही करने का इस्तेमाल करे, अल्लाह से ताल्लुक बढ़ाने के लिए अल्लाह से ताल्लुक रखने वाले लोगों के साथ भी अपना ताल्लुक बढ़ाए। اللهم اهدنا واهد بنا وتعالى على الراشدين.